हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 16 और 17। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णातदीय पद पंकज पंजरांतम् अद्यैव मे विशतो मानसराजहंस। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्वा। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं, यत्वंदनं यत् श्रवणं यदर्हणं, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात होना द्रपुलिंद पुलकशा, आभीर शुंभा यवना खसादया, येनेच पापा यदपाश्रयाशया, शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं, नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद, दूसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है हृदय में भगवान, जिसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भगवान की धारणा के विषय में बता रहे हैं। पहले तो उन्होंने बताया कि भगवान के प्रत्येक अंग का एक एक करके दर्शन करना चाहिए, चरणों से स्टार्ट करके भगवान के मुस्कुराते हुए मुखमंडल तक आना चाहिए। एक एक शुंगानि ध्यानो भवायेत पादादियावर्थसितं गदाभृता जितं जितं स्थानमपोह धारये परम परम शुद्ध्यति धीर्यथा। जैसे जैसे हम भगवान के श्री अंगों का दर्शन करते जाएंगे, वैसे वैसे हृदय के अंदर जो मलिनता है, बुद्धि के अंदर जो अपवित्रता है, वो साफ होती जाती, शुद्ध होती जाती है। हृदय और बुद्धि जब शुद्ध हो जाते हैं तो वो भगवान के अंदर लगते हैं, भौतिक वासनाएं समाप्त होती हैं। इसलिए इंद्रियों को भगवान के दर्शन करने में नेत्रों को लगाना चाहिए। लेकिन यदि भगवान के विग्रह में अभी तक प्रेम विकसित नहीं हुआ है तो क्या करना चाहिए? उन्होंने बताया श्लोक नंबर 14 में, उन्होंने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यावन न जायेत परावरिस्मिन् विश्वेश्वरि द्रष्टरि भक्ति योग तावत् स्थावीय पुरुषरूपम् क्रियावसाने प्रयत स्मरेत। ठीक है, अगर यावन न जायेत पर, उस पर दिव्य भगवान के साकार रूप में यदि विश्वेश्वर दिष्टरी भक्ति योगा, अभी तक भक्ति योग उत्पन्न नहीं हुआ है तो क्या करें? तावत स्थवीय पुरुष रूपम, तो भगवान के स्थूल विराट जगत विराट स्वरूप को ही याद करने का प्रियत स्मरेत, उसको स्मरण करने का प्रयत्न करना चाहिए, अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। और उस तरह से स्मरण करने की विधि बताते हुए उन्होंने श्लोक नंबर 15 में कल हमें बताया कि जीव का वास्तविक कल्याण तभी है जब वो मृत्यु के समय या जब इस शरीर को त्यागता है उस समय भगवान के अंदर उसका मन लगा हुआ हो। तो उसको क्या करना चाहिए? स्थिरम सुखम चासनमास्थितो यते यदा जिहा सूर्यम मंगलोकम। वो जो इस शरीर को या इस भौतिक जगत को त्यागने का इच्छुक है, उसको क्या करना चाहिए? सावधानी के साथ स्थिरम सुखम चासनमास्थितो, एक आसन के ऊपर स्थित हो जाना चाहिए और उसको फिक्र नहीं करनी चाहिए। काली च देशे च मानो न सज्जयेत, देश काल और परिस्थिति के लिए उसको परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि प्राणान्येत मनसाजितासु, अविचल भाव से जब वो आसन लगा कर बैठ जाए, प्राण वायु को नियमित करे और मन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करे, भगवान के अंदर लगाए। और मन आगे भी बताते हैं फिर क्या करे, जब उसका मन और इंद्रियां वश में हो जाए तो आगे कहते हैं श्लोक नंबर 16 में, मन स्वबुद्ध्या मलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एताम् निनयेत्तमात्मनि आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धो पशांतिर् विरमेत कृत्यात्। मनः स्वबुद्ध्या मलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एताम् निनयेत्तमात्मनि आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशान्तिर् विरमेत कृत्यात्। मनः स्वबुद्ध्या मलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एताम् निनयेत्तमात्मनि आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धो पशांतिर विरमीत कृत्यात्। अर्थात मन स्वबुद्धिया अमलया नियम्य। मन यानी मन को स्वबुद्धिया यानी बुद्धि से, बुद्धि से मन को अमलया शुद्ध करना है। बुद्धि को पहले ये ज्ञान प्राप्त हो जाए कि क्योंकि ये शरीर तो नाशवान है, इस शरीर को सुख प्रदान करके कभी भी आनंद संभव नहीं है। बुद्धि जब ये विकसित हो जाती है और अपने स्व को पहचानने लगती है कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर मन को अपनी बुद्धि माँ है और मन बच्चा है। जिस तरह माँ जो है, भले मन तो बहुत ही चंचल है, हर वस्तु की मांग करता है, लेकिन जिस तरह से बच्चा कभी बहुत ही खतरनाक वस्तु की इच्छा करता है, जैसे वो आग की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन माँ क्योंकि जानती है कि ये अग्नि जो है वो उसको भस्म कर देगी, इसलिए वो समझाती है उसको किसी तरह से कि नहीं बेटा, इधर आप नहीं जा सकते, ये आपके लिए बहुत कष्ट प्रदान हो सकती है। इसीलिए माना स्वबुद्धिया, इसी तरह से बुद्धि जो है वो मन को समझा सकती है। यदि बुद्धि को यदि ज्ञान प्राप्त हो जाए तो अमलया नियम्य, नियम्य मतलब नियमित करके, नियम मन को नियमित कैसे करेंगे कि बुद्धि जो है बार बार मन को यह समझाने का प्रयास करेगी कि नहीं, वो वस्तु तुम्हारे लिए हानिकारक है। मन तो हर उस वस्तु की ओर भागेगा जो कि देख रहा है, जो सुन रहा है, जो स्पर्श कर रहा है, लेकिन बुद्धि का कार्य है कि मन को नियमित करे। और फिर क्षेत्रज्ञ एताम् निनयेत् तमात्मनि। क्षेत्रज्ञ, ये क्षेत्र इस शरीर को कहते हैं और क्षेत्रज्ञ उस जीव आत्मा को कहते हैं जो इस क्षेत्र को जानने वाला है। भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता के 13वें अध्याय में बताते हैं कि क्षेत्रज्ञ वो है जो इस शरीर के अंदर रहता है और इस शरीर को जानता है, यानी जीव आत्मा। क्षेत्रज्ञ एताम निनयेत यानी विलीन करके तम आत्मनि, अब जीव आत्मा को परमात्मा के अंदर विलीन करना है कि क्योंकि जीव आत्मा भगवान का अंश है, तो फिर जीव आत्मा को ये अनुभूति कि क्योंकि मन और बुद्धि जो है वो नियमित हो गए, फिर जीव आत्मा जो है वो टिक जाएगी परमात्मा के स्वरूप, स्वरूप साक्षात्कार को नहीं लेकिन परमात्मा के अंदर उस वो लीन हो जाएगी। इस तरह से आत्मानमात्मन्य वरुध्य धीरो, धीर का मतलब होता है पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए। इस तरह से जब आत्मा परमात्मा में अवरुद्ध हो जाएगी, बंध जाएगी, परमात्मा के चरणों में उसका पूरा का पूरा समर्पण हो जाएगा, तब क्या होगा, लब्धोपशांतिर विरमेत कृत्यात्। लब्धोपशांति, जिसने पूर्ण आनंद प्राप्त कर लिया, लब्धो उपशांति यानी अब उसको शांति प्राप्त करने के लिए भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। विरमेत कृत्यात् यानी विराम ले लेता है, कृत्यात् अब उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको वास्तविक पूर्ण आनंद और शांति प्राप्त हो गई है। बुद्धि ने मन को जीत लिया और आत्मा भगवान के चरणों में लग गई, तो वो धीर व्यक्ति आनंदित हो जाता है, लब्धो उपशांति। अनुवाद देखिए, तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वह अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीव आत्मा में तदाकार करे और फिर जीव आत्मा को परम आत्मा में विलीन कर दे। ऐसा करने के बाद पूर्णतया तुष्ट जीव तुष्टि की चरम अवस्था को प्राप्त होता है, जिससे वह अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर लेता है। वापिस से देखिए, तत्पश्चात, किसके पश्चात, जब वो सावधानी से आसन में बैठ जाता है, काल और देश की कोई चिंता नहीं करता है और अंत में प्राण वायु को नियमित कर देता है, अपनी इंद्रियों को रोकता है। इंद्रियों को वश में करने के बाद बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करता है, नियमित करता है, और फिर आत्मा जो है उसको भगवान के चरणों के ऊपर स्थित करता है। जब आत्मा परमात्मा में स्थित हो जाती है तो पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त होती है, और लब्धोपशांतिर उस तरह से उप शांति प्राप्त होती है, पूर्ण आनंद उसको प्राप्त होता है, और अन्य सारे भौतिक कार्य जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अर्थात तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वह अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीव आत्मा में तदाकार करे, यानी बुद्धि को अपनी बुद्धि के द्वारा मन को जीव आत्मा में तदाकार करे। मन अब भौतिक वस्तुओं के विषय में नहीं सोचेगा, बल्कि क्या सोचेगा कि जीव आत्मा का कल्याण करना है। फिर जीव आत्मा परम आत्मा के अंदर लीन हो जाएगी। ऐसा करने के बाद पूर्णतया संतुष्ट जीव तुष्टि की चरम अवस्था को प्राप्त करेगा, जिससे वह अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देगा। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर जैसे बताया गया मन सबुद्ध्या, अभी उसी मन के विषय में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मन के कार्य हैं सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। कंटिन्यूस सोचता रहता है, कंटिन्यूस अनुभव करता रहता है कुछ न कुछ, और इच्छा करता रहता है। जब मन भौतिकतावादी होता है तो भौतिक संसर्ग में लीन रहता है, तब वह ज्ञान की भौतिक उन्नति के लिए कार्य करता है। जब तक उसे आध्यात्मिक आनंद के विषय में नहीं खबर है, तब तक वो क्या सोचता है, भौतिक ही वस्तुओं के विषय में सोचता है, अनुभव करता है और इच्छा करता है। जिसकी चरम प्रणति आणविक अस्त्रों की खोज में होती है, आणविक मतलब छोटी छोटी चीजें प्राप्त करने के लिए वो सोचता है, किंतु जब आध्यात्मिक संवेग के अंतर्गत कार्य करता है तो वह जीव आत्मा में पूर्ण आनंद तथा शाश्वतता के लिए, अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस जाने के लिए आश्चर्यजनक ढंग से कार्य करता है। एक बार जब बुद्धि ने मन को इस बात के लिए कन्विंस कर दिया कि नहीं, इस भौतिक जगत में तो आनंद नहीं मिलेगा, भौतिक जगत में चाहे कुछ भी प्राप्त हो जाए वो वस्तु हमें आनंदित नहीं कर सकती है, फिर वो अपने वास्तविक लक्ष्य यानी भगवत धाम जाने के लिए ऐसे आश्चर्यजनक कार्य करता है। अतएव मन को उत्तम तथा विशुद्ध बुद्धि के द्वारा सुनियोजित किया जाना चाहिए, यानी कि ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और मन को बहुत ही सुंदर रीति से शिक्षण दिया जाना चाहिए। परिपूर्ण बुद्धि भगवान की सेवा करने के निमित्त होती है। बुद्धि भगवान ने दी है कि इस बुद्धि के द्वारा हम भगवान की सेवा करें, लेकिन बहुत दुर्भाग्य है हम बुद्धि के द्वारा भगवान की सेवा ना करने के लिए प्लानिंग करते हैं, कि भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन बुद्धि को कभी भी इसके लिए ना शिक्षण नहीं देते हैं कि ये बुद्धि से हम भगवान की सेवा करें, बल्कि बुद्धिमानी से भौतिक कार्य करते हैं खाली। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, मनुष्य को इतना तो समझ लेना चाहिए कि जीव समस्त परिस्थितियों का दास है। प्रत्येक जीव इच्छा, क्रोध, वासना, भ्रम, पागलपन तथा ईर्ष्या के आदेशों के अनुसार कार्य करता है, और ये सब के सब भौतिकता से प्रभावित होते हैं। हर एक जीव जो है वो बद्ध है इस भौतिक जगत में, परिस्थितियों का दास है। हमेशा हम परिस्थितियों के अनुसार जैसा भी होता है उसके अनुसार इच्छा करते हैं, क्रोध करते हैं, वासना होती है, कार्य करते हैं, इसे कि हमेशा उन कार्यों के लिए ही हमें लज्जित होना पड़ता है। तो इतना तो समझ जाना चाहिए कि हम परिस्थितियों के दास हैं, स्वामी नहीं हैं, और इन परिस्थितियों के आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं, और सब के सब भौतिकता से प्रभावित हैं। किंतु इन समस्त संवेगों के आदेशों का पालन करते हुए वह निरंतर दुखी रहता है। भले कितना ही हम परिस्थितियों के आदेशों का पालन करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो करने के बाद भी कभी आनंद तो आता नहीं है, सदैव दुखी होते हैं। जब वह वास्तव में इसका अनुभव करता है और सही स्रोतों से इसकी खोज करने के लिए अपनी बुद्धि दौड़ाता है तो उसे भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा का पता चलता है। जब तक जीव जो है वो भौतिक वस्तुओं की परिस्थितियों के आदेशों के अनुसार कार्य करता रहता है उसको कोई आनंद नहीं आएगा, लेकिन जब वो वास्तविक खोज करता है सही स्रोतों से यानी गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार वास्तव में इसका अनुभव करता है कि क्योंकि इन सब सारी वस्तुएं जो भौतिक हैं वो मुझे दुखदायी कर रही हैं, इसे कुछ तो ऐसा सोचूं, कुछ तो ऐसा करूं जिससे मुझे वास्तविक आनंद आए, तो उसकी खोज करने के लिए अपनी बुद्धि दौड़ाता है तो उसे भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा का पता चलता है। बस एक बार आप ये सोच लो कि मुझे भौतिक वस्तुएं आनंदित नहीं कर रही हैं, भौतिक परिस्थितियों की गुलामी करते करते उनके आदेशों का पालन करते करते न जाने कितने जीवन गुजर चुके हैं, खुशी कभी नहीं मिली और न ही मिलेगी। जब हम इस बात पे कन्विंस हो जाएंगे ना, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? दिव्य प्रेममयी सेवा की खोज। मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, के आमी के में आमार अजार ताप पत्रये, मैं इस भौतिक जगत में क्यों आया, तीन ताप मुझे क्यों सता रहे हैं, मैं क्यों बारंबार जन्म मरण के चक्कर में फंस रहा हूँ, आखिर वो कौन सा तरीका है जिससे मैं इस बद्ध अवस्था से मुक्त होकर अपने वास्तविक घर की ओर जाऊंगा। फिर इन सवालों का जवाब ढूंढने को कहते हैं जिज्ञासा। वास्तव में ये मनुष्य जन्म मिला ही जिज्ञासा करने के लिए, इसलिए वेद कहता है अथासो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है तो ब्रह्म की जिज्ञासा करने के लिए मिला है। इसलिए ऋषभ देव अपने पुत्रों को कहते हैं, देखो पुत्रो, ये जो मनुष्य जीवन मिला है ना, नायम देहो देह बाजाम नृलोके कष्टान कामान अहर्ते विट्ट बुझान। ये जो भौतिक वस्तुओं का आनंद लेने के लिए ये भौतिक जगत में ये मनुष्य जीवन नहीं मिला है, क्योंकि भौतिक आनंद तो कुत्तों और सुअरों को भी आसानी से उपलब्ध होता है। कष्टान कामान अहर्ते विट्ट बुझान, विट्टभुजा कहते हैं जो मल खाने वाले सुअर होते हैं ना, उनको भी तो इंद्रिय तृप्ति मिल रही है, ये इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं मिला। तो मानो ऋषभ देव के पुत्र पूछते हैं, पिताजी फिर ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है? तब वे कहते हैं, ये तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्वम, ये दिव्य तपस्या करने के लिए मिला है, और दिव्य तपस्या करने से क्या होगा, ब्रह्म सुख्यम त्वनंतम, ऐसा सुख जिसका कोई अंत नहीं है, वो कंटिन्यूस शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए भौतिक जगत में ये शरीर ये मनुष्य शरीर मिला है। तो फिर वो क्या करता है, दिव्य प्रेममयी सेवा का पता लगाता है। तब बुद्धि शरीर के उपर्युक्त रसों की भौतिकता की दृष्टि से सेवा ना करके भौतिकतावादी मनोवृत्ति के दुखद भ्रम से मुक्त हो जाती है, और इस प्रकार मन विशुद्ध बुद्धि से भगवान की सेवा में लग जाता है। जब बुद्धि भौतिक वस्तुओं से अपना आकर्षण समाप्त करके भगवान की ओर जाता है तो फिर विशुद्ध मन और बुद्धि से भगवान की सेवा में लग जाता है। आगे श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, भगवान एवं उनकी सेवा परम धरातल पर होने के कारण अभिन्न है, अतएव अमिश्रित बुद्धि तथा मन भगवान में तदाकार हो जाते हैं। यानी भगवान की सेवा चाहे किसी भी तरह से की जाती है वो भगवान से अलग नहीं है, भगवान और भगवान की सेवा दोनों दिव्य हैं। भगवान का नाम, भगवान की सेवा, भगवान की लीलाएं सब दिव्य हैं, और जब विशुद्ध हृदय के साथ जीव भगवान के अंदर अपना मन लगाता है, भगवान के अंदर बुद्धि लगाता है, भगवान में तदाकार हो जाते हैं, और इस तरह जीव मात्र दृष्टा न रह जाता अपितु भगवान के द्वारा दिव्य रूप से देखा जाता है। जब जीव भगवान द्वारा प्रत्यक्ष देख लिया जाता है तो वे अपनी इच्छा अनुसार जीव को आदेशित करते हैं, और जब जीव उनके आदेशों का पूर्णतः पालन करने लगता है तो जीव अपनी भ्रामिक तुष्टि के
लिए अन्य कार्य करना बंद कर देता है। जीव अपनी विशुद्ध अवस्थाओं में पूर्ण आनंद की उपलब्धि करता है। लब्धोपशांति और समस्त भौतिक लालसाओं से निवृत्त हो जाता है। मतलब जब जीव आध्यात्मिक धरातल पर भगवान के साथ अपने संबंध को ढूंढता है, यानी कि मन और बुद्धि को भगवान के अंदर लगाता है, तो क्योंकि वो दिव्य स्तर पर आ जाता है, फिर वो केवल भगवान को ही नहीं देखता बल्कि भगवान के द्वारा देखा जाता है। भगवान जीव के प्रयासों के द्वारा आनंदित होते हैं और फिर जीव को आनंद प्रदान करते हैं, अपनी विशुद्ध बुद्धि में पूर्ण आनंद की उपलब्धि करता है। लब्धोपशान्तिर् शान्तिर्विरमेत कृत्यात्। फिर और जितने भी भौतिक लालसाएं हैं, भौतिक कार्य हैं, वो सब उनसे निवृत्त हो जाता है। आगे कहते हैं शुकदेव गोस्वामी, और जब वो उस दिव्य आनंद को प्राप्त करता है, उस शांति को प्राप्त करता है, फिर और उसके और उस शांति के बीच में और कोई भी नहीं रहता, केवल आनंद ही आनंद रह जाता है। आगे कहते हैं, नायत्र कालो निमिषं परं प्रभु कुतो न देवा जगतां य ईशिरे, नायत्र सत्वं नरजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रदानम्, नायत्र कालो निमिषां परः प्रभु कुतो न देवा जगतां य ईशिरे, नायत्र सत्वं नरजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम्, नायत्र कालो निमिषां परः प्रभु कुतो न देवा जगतां य ईशिरे, नायत्र सत्वं नरजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम्। न यत्र कालो निमिषं परः प्रभु, परः प्रभु मतलब जो सर्वोपरि नियंता है, काल जो है, जो कि सारे देवी देवताओं को भी नियंत्रण, क्योंकि न यत्र कालो जो काल है, जो विनाशकारी है, और अनिशा मतलब देवताओं का भी जो विनाश कर देता है, जो बड़े बड़े देवी देवता हैं, जैसे इंद्र, देवराज इंद्र का भी समय के बाद उसका भी समाप्त हो जाता है और वो भी उनका भी राज्य खत्म हो जाता है। एक समय ऐसा आता है ब्रह्मा का भी समय समाप्त हो जाता है, यानी काल जो है वो किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन ये काल भी जब वो जो शांति होती है लब्धोपशांति, उस दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की सर्वोपरिता नहीं रहती। फिर ऐसा नहीं है कि कोई समय ऐसा आएगा कि उसका उसके आनंद को काल समाप्त कर देगा। जब जीव आत्मा परमात्मा के साथ अपना संबंध पुनः निर्माण कर लेती है और वास्तविक भौतिक सारे कार्य समाप्त करके भगवान के चरणों में ध्यान लग जाता है, फिर वो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। न यत्र कालो निमिषं परः प्रभु, तो फिर कुतो न देवा जगतां य ईशिरे। जब काल सारे देवी देवताओं का भी मुख्य है, उससे भी परे है, वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर साधारण जो देवी देवता हैं, उनकी क्या, कुतो न दे कुतो न देवा जगतां य ईशिरे। इस जगत के संसारी प्राणियों का क्या कहना, देवताओं को, देवता भी उसके लिए कुछ भी हानि नहीं कर सकते, तो साधारण प्राणियों का क्या कहना। न यत्र सत्वम न रजस तमस्य, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण उसके ऊपर कभी भी प्रभावित, उसका प्रभाव नहीं होता, और न वै विकारो न महान् प्रधानम्। न वै विकारो, ना ही मिथ्या अहंकार, कोई अन्य विकार, न भौतिक कारण व अथवा न भौतिक प्रकृति उसको कुछ भी विचलित नहीं कर पाता। जब इस अवस्था में वो आ जाता है तो केवल केवल लब्धो प्रशांति, केवल आनंद ही आनंद रह जाता है। अनुवाद देखिए, उस लब्धो प्रशांति की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की सर्वपरिता नहीं रह पाती, जो उन देवताओं का भी नियामक है जिन्हें संसारी प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो फिर स्वयं देवताओं के विषय में तो कहना है क्या? इस अवस्था में ना तो भौतिक सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण लेते हैं, ना ही मिथ्या अहंकार, ना भौतिक कारणव अथवा ना भौतिक प्रकृति ही रह पाती है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, विनाशकारी काल जो भूत वर्तमान तथा भविष्य के रूप में व्यक्त होकर स्वर्गस्थ देवताओं को भी नियंत्रित करता है, वह आध्यात्मिक धरातल पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता, क्योंकि भगवान का ध्यान आध्यात्मिक है तो वहां पर दिव्य स्थान में काल का कोई प्रभाव नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं जमाता। काल का प्रभाव जन्म मृत्यु जरा व्याधि के लक्षणों के रूप में प्रकट होता है, और भौतिक अवस्था के ये चारों नियम भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी भाग में ब्रह्मलोक तक भी, जहां निवासियों की आयु अत्यधिक है, सर्वत्र पाए जाते हैं। दुर्जीय काल ब्रह्मा तक की मृत्यु का कारण बनता है, तो इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु तथा वरुण जैसे अन्य देवताओं के विषय में क्या कहना? विभिन्न देवताओं द्वारा संसारी प्राणियों पर निक्षिप्त ज्योतिषी प्रभाव भी स्पष्ट रूप से अनुपस्थित रहता है। अभी क्या है, काल का इंद्र, चंद्र ये सब के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो लेकिन फिर भी वो जीव जो कि आध्यात्मिक धरातल पर हो गया है, उसको काल, उसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। और आगे श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं। वे कहते हैं, भौतिक जगत में सारे जीव आसुरी प्रभाव से भयभीत रहते हैं, किंतु दिव्य पद पर स्थित भक्त को ऐसा भय नहीं रहता। सारे जीव प्रकृति के विभिन्न गुणों के प्रभाव से विभिन्न रूपों तथा आकारों से अपने अपने भौतिक शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन दिव्य अवस्था में भक्तगण गुणातीत होता है, अर्थात भौतिक सत्व रजो तथा तमोगुण से परे रहता है। तो वो जगह जो होता है भौतिक जगत में, तो हम जो है वो आसुरी प्रभावों से भयभीत होते हैं और प्रकृति के गुणों के द्वारा मोहित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 7.14 में, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। ये भौतिक जगत में जब तक रहोगे ना, तो तुम क्योंकि भौतिक धरातल पे हो तो फिर मेरी माया को नहीं जीत पाओगे, लेकिन तुम यदि मेरी शरण में आ जाओगे, माम एव ये प्रपद्यन्ते, तो फिर माया के ये तीनों गुण तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। न यत्र सत्वम न रजस तमस्या, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण उस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव नहीं दिखा सकते। इस प्रकार यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस प्रकार मैं जहां तक जा सकता हूँ उसका स्वामी हूँ, ऐसा मिथ्या अहंकार वहां नहीं उठ पाता। यानी कि फिर मन में ऐसा भाव नहीं आता कि मैं स्वामी हूँ। उस समय जीव अपने अस्तित्व को जान लेता है। भौतिक जगत में प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने की मिथ्या अहंकार प्रज्वलित अग्नि में पतंगों के गिरने के समान है। अग्नि प्रज्वलित होती है और पतंगा जो होता है वो उसके अंदर जिस तरह गिरता है, उसी तरह से हमारा जो प्रभुत्व जताने की जो इच्छा है वो हमें बारंबार भौतिक जगत में भेजती है। पतंगा अग्नि के दीप्तमान सौंदर्य पर मोहित होता है, किंतु जब वह इसका भोग करने चलता है तो अग्नि उसे जलाकर खाक कर देती है। दिव्य स्थिति में जीव की चेतना शुद्ध रहती है, अतएव प्रकृति पर प्रभुत्ता जताने का उसमें मिथ्या अहंकार नहीं रहता। इसके विपरीत उसकी शुद्ध चेतना उसे परमेश्वर की शरण में जाने के लिए निर्देशित करती है। जब तक भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक वासनाएं हैं, तभी तक तो जीव प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है, लेकिन जब उसे यह रियलाइज हो जाता है कि ये सब इच्छाएं, ये सब वासनाएं मेरे शरीर की देन है, परंतु मैं वास्तव में आत्मा हूँ और मेरा आनंद केवल कृष्ण चरणों में है, भगवान की भक्ति में है, तो फिर क्या होता है? उसको मिथ्या अहंकार समाप्त हो जाता है, प्रभुत्व जताने की भी इच्छा समाप्त हो जाती है और शुद्ध चेतना भगवान की शरण में जाने के लिए निर्देश देती है कि बस अब भगवान की शरण में जाओ, भगवान के गुण गाओ, भगवान की सेवा करो, इसी में आनंद आए। और श्रील प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7.19 में कहा गया है, वासुदेव सर्वम इति समाहात्मा सुदुर्लभ। इसे संकेत मिलता है कि दिव्य स्थिति में ना तो भौतिक सृष्टि रहती है, ना ही भौतिक प्रकृति के लिए कारण सागर रहता है। मतलब उसको हर चीज केवल कृष्णमयी दिखती है, फिर उसको कोई भी भौतिक वस्तु नहीं दिखती। क्या दिखता है? वासुदेव सर्वम इति, सब कुछ भगवान ही है। भगवान के दर्शन हर एक प्रत्येक वस्तु में होते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, उपर्युक्त परिस्थिति में दिव्य धरातल पर वास्तविक, उपर्युक्त परिस्थिति दिव्य धरातल पर वास्तविक है, किंतु यह आध्यात्मिक आध्यात्मवादी की शुद्ध चेतना की उच्च अवस्था में वास्तविक रूप से प्रकट होती है। कैसी स्थिति? के जिस स्थिति पर न काल का प्रभाव है, न देवताओं का प्रभाव है, न किसी भौतिक प्रकृति के सत्व रजो तथा तमोगुण का प्रभाव है, ये वास्तव में ये दिव्य धरातल है, लेकिन आध्यात्मिकवादी की शुद्ध चेतना की उच्च अवस्था में वास्तविक रूप से प्रकट होता है। जब तक बुद्धि जो है उस शुद्ध चेतना में नहीं आ जाती है, मन जो है वो भगवान के चरणों में नहीं टिक जाता है, जीव आत्मा जब तक परमात्मा के अंदर तदात्मय नहीं हो जाती, तब तक नहीं आ जाएगी ऐसी स्थिति। और वो आध्यात्मवादी कितने टाइप के होते हैं, श्री प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि ऐसे आध्यात्मवादी दो प्रकार के होते हैं, निर्विशेषवादी तथा भक्त। चाहे निर्विशेषवादी हो या भक्त हो, यदि वो भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों का पूरा आकर्षण समाप्त करके अपने संपूर्ण आसक्ति को भगवान के अंदर लीन कर लेते हैं, तो ये आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त होती है। और वो दो प्रकार के आध्यात्मवादी होते हैं, कौन कौन से? निर्विशेषवादी तथा भक्त। निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य या गंतव्य रहता है परव्योम में ब्रह्म ज्योति, किंतु भक्तों का अंतिम लक्ष्य रहता है वैकुंठ के ग्रह। भक्तों को उपर्युक्त स्थिति का अनुभव भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के लिए सक्रिय होने हेतु दिव्य रूप का पाकर होता है। भक्त क्या सोचता है कि मुझे भगवान के दास स्वरूप में भगवान की सेवा करनी है, बाकी भी ये यथा माम प्रपद्यते। भक्त अपना कोई ना कोई संबंध भगवान के साथ जोड़ता है और कोई ना कोई रस में भगवान की सेवा करना चाहता है, चाहे वो वात्सल्य रस हो, चाहे सखा रस हो, चाहे दास भाव से, या फिर प्रेममयी सेवा से, या फिर ना किसी भी भाव से भगवान की सेवा करना चाहता है, तो फिर वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा अस्तित्व समाप्त हो। इसी श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, भक्तों का क्या है लक्ष्य कि वैकुंठ का ग्रह, कहीं पर मुझे भगवान की सेवा करने का अवसर मिले। भक्तों को उपर्युक्त स्थिति का अनुभव भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के लिए सक्रिय होने होते दिव्य रूप पाकर होता है, फिर उसको एक ऐसा दिव्य स्वरूप प्राप्त होता है जिसमें वो भगवान की सेवा कर सकते हैं। लेकिन निर्विशेषवादी भगवान की संगति की उपेक्षा करने के कारण आध्यात्मिक कार्यकलापों के लिए आध्यात्मिक शरीर विकसित नहीं कर पाता, अपितु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ब्रह्म ज्योति में आध्यात्मिक सफुलिंग के रूप में विलीन होकर रहता। उसको कोई भी दिव्य शरीर प्राप्त नहीं होता, बल्कि वो ब्रह्म ज्योति में ही लीन हो जाता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान पूर्णतः, बहुत ही सुंदर और स्पेशल बात यहाँ बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जी कि भगवान पूर्णतः शाश्वतता, आनंद तथा ज्ञान के रूप है। भगवान सच्चित आनंद है, लेकिन निराकार ब्रह्म ज्योति केवल शाश्वतता तथा ज्ञानमयी है, यानी सत है और चित है। उसके अंदर वो आनंद नहीं है जो कि आत्मा का लक्ष्य है।
आत्मा प्रेम चाहती है तो उस प्रेम को वो निराकार के साथ उसका आदान प्रदान नहीं हो सकता। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान पूर्णतः सचित आनंद है, शाश्वतता आनंद तथा ज्ञान रूप है, जबकि निराकार ब्रह्म ज्योति केवल शाश्वतता ज्ञानमय है। वैकुंठ ग्रह भी शाश्वतता आनंद तथा ज्ञान के रूप है। अतएव भगवान के वे भक्त जिन्हें भगवान के धाम में प्रवेश दिया जाता है, वे भी शाश्वत ज्ञानमय तथा आनंदमय शरीर प्राप्त करते हैं। इस तरह उनमें परस्पर कोई अंतर नहीं रहता। भगवान के धाम, नाम, यश, पार्षद आदि एक ही दिव्य गुण वाले होते हैं, और यह दिव्य गुण भौतिक जगत के किस से किस प्रकार भिन्न होता है, इसकी व्याख्या इस श्लोक में की गई है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने तीन प्रमुख विषयों यानी कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन किया है, किंतु इनमें से केवल भक्ति योग द्वारा ही मनुष्य वैकुंठ पहुंच सकता है। अन्य दो विषय वैकुंठ लोक पहुंचने में अक्षम रहते हैं, भले ही वे ब्रह्म ज्योति तक सुगमता से पहुंच सकते हैं, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही उत्तम बात बता रहे हैं कि यदि आपको भगवान का सानिध्य प्राप्त करना है, वैकुंठ लोक प्राप्त करना है, तो भगवान के प्रेममयी भक्ति के द्वारा ही वहां पर पहुंचा जा सकता है। भगवान ने कह दिया भगवत गीता में, मन मना भव मद भक्तो, मन में मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, और यही तरीका है मेरे धाम में पहुंचने का। मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि में, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, यदि तुम मेरे साकार स्वरूप का ध्यान करोगे, मेरी भक्ति करोगे, मेरी पूजा करोगे, मुझे प्रणाम करोगे, मुझे नमस्कार करोगे, तो मुझे प्राप्त करोगे। भगवान ने ये कहीं नहीं लिखा कि यदि तुम मेरे निराकार स्वरूप का ध्यान करोगे तो तुम्हें मेरी आध्यात्मिक जगत में मेरा सानिध्य प्राप्त होगा, मेरा प्रेम प्राप्त होगा, मेरा भगवान का घर आपको तभी प्राप्त होगा जब भगवान के साथ कोई संबंध जुड़ेगा। लेकिन यदि कोई ब्रह्म ज्योति में ही उसका वो ब्रह्म ज्योति में ही तदाकर होना चाहता है, भगवान के स्वरूप को नहीं मानता, निर्विशेष है, तो उसको ब्रह्म ज्योति तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन भगवान का धाम नहीं। यहाँ पर जैसे बताया श्रील प्रभुपाद जी ने, अन्य दो विषय वैकुंठ लोक पहुंचाने में अक्षम है, यानी अन्य दो कौन से, कर्म योग और ज्ञान योग के द्वारा भगवान का लोक प्राप्त नहीं होगा, भले ही ब्रह्म ज्योति प्राप्त होगी। तो हमें भगवान के साकार स्वरूप में अपना मन लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में इस कलयुग में हमारे लिए बहुत सरल यही है, वो बहुत मुश्किल रास्ते हैं। भले ही भगवान ने कह दिया ये रास्ते हैं, लेकिन ये भी बता दिया, क्लेशोधिक तरस तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, उनके लिए जो अव्यक्त में अपने मन को लगाते हैं, उनके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान कहते हैं, जो मेरे साकार स्वरूप की भक्ति करता है, उनको तो मैं अपना हाथ पकड़ के भवसागर से बाहर निकाल कर अपने धाम में लेके जाता हूँ। भगवान कहते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता, मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ, मैयावेशित चेतसाम, जिसका चित्त मुझ में आविष्ट हो जाता है, इसका मन मुझ में लग जाता है, उसको क्या करता, तेषाम अहम समुद्धरता, मतलब उसका मैं उद्धार कर देता हूँ, उसका मैं उद्धार, तेषाम अहम, मैं स्वयं जाता हूँ उसका उद्धार करने के लिए, कहाँ से, मृत्यु संसार सागर, मृत्यु संसार सागर से उसका स्वयं उद्धार करता हूँ, कुछ भी उसको कष्ट होने नहीं देता हूँ। भवामी न चिरात पार्थ, नहीं अर्जुन, मैं बिल्कुल देर नहीं लगाता हूँ, न चिरात, दीर्घ काल तक उसको इंतजार नहीं करना पड़ता है, बल्कि जल्दी से जाता हूँ, और उसको इस भौतिक जगत के समुद्र से बाहर निकालता हूँ जिसका मन मुझ में लगा होता है। तो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा अशांत और अपवित्र मन, जो कि भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, भौतिक व्यक्तियों का संग प्राप्त करने के लिए सदैव विचलित होता है, उस मन को अपने चरणों की ओर आकर्षित करो और इस योग्य बनाओ कि हम आपके पवित्र नाम को अच्छे से जप कर सकें, आपके दर्शन का आनंद ले सकें, आपके प्रेममयी स्वरूप को आस्वादन कर सकें, और इस तरह से बहुत ही जल्द हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया यूं ही मेरे लिए प्रार्थना अवश्य करते रहिएगा ताकि मैं सेवा अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।